ओम शांति। सबसे पहले बाबा की विशेष अनन्य रतन साकार में मम्मा बाबा के अति समीप उनकी पालना लिए हुए बाप दादा के हमारी दादियों के सदैव अंग संग यज्ञ रक्षक और हम सभी के समक्ष उदाहरण मूर्त बाप दादा के इशारों को प्रैक्टिकल स्वरूप देने वाले आदरणीय निर्वैर भाई का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप भी कल मोहिनीबेन के साथ अहमदाबाद गए थे, रात्रि को वापस आए और अभी हम सबके सामने है। आप सबका स्नेह और प्यार हमारी दादियों को, हमारे वरिष्ठ भाइयों को सदा चुंबक की तरह खींचता रहता है। ऐसे बाबा के आप अनन्य रतन हर कदम बाप दादा की प्रेरणाओं को प्रैक्टिकल करने के साथ साथ अनेक आत्माओं के जीवन को बाबा के अति समीप लाने के और इस बेहद की सेवा के अंदर तन मन धन से समर्पित हो सहयोगी बनने के, बेहद की सेवाओं के निमित्त बनाने के आप प्रेरणा मूर्ति हैं। जिस हॉल में हम सभी बैठे हैं, इस हॉल का निर्माण अथवा कहीं इस हॉल के निमित्त भी बाप दादा ने आपको बनाया। आप सबने ग्लोबल हॉस्पिटल भी माउंट आबू में देखा, उसका भी निर्माण और उसकी भी स्थापना के निमित्त बाबा ने आपको बनाया। न सिर्फ देश लेकिन विदेश के भी अनेकानेक देशों में अनेक आत्माओं के जीवन को बाबा का बनाने के साथ साथ उन आत्माओं को भी बाप समान सैंपल बनाने में आपका विशेष योगदान है। अपने राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के आप सेक्रेटरी जनरल हैं और उसमें जो भिन्न भिन्न विंग्स हैं उसमें एजुकेशन विंग के आप चेयरपर्सन भी हैं, लेकिन बेहद बाबा के यज्ञ की बेहद की सारी ही कारोबार बेहद यज्ञ में बैठे हुए बाबा ने आपको निमित्त बनाया हुआ है। और दादियों के तो इतने समीप हैं, जो बड़ी दादी प्रकाशमणि जी के भी साथ जब तन खटपट करता है तो पूरा ही समय उनके साथ रहे, जानकी दादी जी के भी साथ पूरा समय रहे, अभी गुलजार दादी जी भी 2 महीना अहमदाबाद में थे तो आप 2 महीना उनके साथ रहे। साकार मम्मा बाबा के तो साथ की बात ही कहनी क्या है, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि इतनी समीपता तो कितना खजाना, कितने अनुभव की कहानियां आप में समाई हुई है। और आज का विषय भी योग की गहराई लाइट हाउस माइट हाउस है, तो इन सब के साथ से वो स्थिति का अनुभव सुनाते सुनाते हम सबको उसी स्थिति की गहराई में भाई साहब ले जाएंगे और अब अनुरोध करती हूं। ओम शांति।
ओम शांति। आप सभी भाइयों और बहनों की विशेष आकर्षण के कारण मैं यहां पहुंच गया। कल सवेरे यहां से अहमदाबाद गए, हमारी प्रिय बहन मोहिनी, उनकी तबीयत जरा ऊपर नीचे हो जाती है तो हॉस्पिटल में उनको कल ले गए, वहां सेटल्ड हैं और आप सबके लिए भी उन्होंने दृष्टि द्वारा ही याद दी। क्योंकि उनका आगे 2-3 दिन अभी उनको वहां रहना होगा तो इस बीच में आप सब भाई बहने दूर दूर से आए हैं, कोई समीप नजदीक से, विशेष हमारे गुजरात के भाई बहने आए हैं, सेवा का टर्न है गुजरात का, तो मन में आया कि हम सबसे मिलें भी और बाबा से भी मिलन मना लें। क्योंकि जब से बाबा का व्यक्त पाठ शुरू हुआ है अभी तक मैंने एक भी टर्न मिस नहीं किया है। मधुबन निवासी बनने का ये बहुत बड़ा लालच है। शारदा बहन ने परिचय दिया, ये हमारा सौभाग्य रहा शुरू से लेकर। साकार बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, खासकर हमारी बड़ी दादियां प्रकाशमणि दादी, पुष्प शांता दादी, ब्रिजिंद्रा दादी और फिर चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी, रत्नमयनी दादी, शीलिंद्रा दादी, जितनी भी दादियां हैं सबके नाम लूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन वो टाइम भले जाए, उन दादियों को देख करके या उस समय के दादा विश्व किशोर, आनंद किशोर, विश्वरतन, सबको, चंद्रास दादा, इन सब की जीवन को देख करके बहुत बहुत प्रेरणा मिलती रही है। बहुत बड़े बड़े घरों से दीदी मनमोहिनी थी, आज भी उनके परिवार वालों के का नाम है बॉम्बे में जसलोक हॉस्पिटल जो है वो उनके परिवार की तरफ से बना हुआ है। लेकिन इन सब आत्माओं को क्या ऐसी चीज मिली जो इतने बड़े बड़े घर की बहनें, माताएं और भाई वो सब अपना छोड़ करके अपने तन मन धन से पूरा एक साथ समर्पित हो गए 380 भाई बहने शुरू में ओम मंडली में आकर के समर्पित हुए थे, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, युवा भी थे, बड़े भी थे, और उनकी ही 14 वर्ष की तपस्या जो हैदराबाद सिंध से शुरू हुई, कराची और उसके बाद माउंट आबू में आकर के 1952 तक, उनकी तपस्या से अपनी जीवन उनकी क्या बनी, वो हम सब के सामने रोल मॉडल बन गए। आप में से जो भी दादी जी के संपर्क में आए होंगे, आज जानकी दादी जी के संपर्क में आते हैं, देखते हैं, रतनमयनी दादी जी को देखते हैं, गुलजार दादी को देखते हैं, थोड़ी सी दादियां बची हुई है, लेकिन जिस जिस के संपर्क में आए, उधर गंगे दादी थी और भी दादियां, बेंगलोर साइड में हमारी हृदय पुष्पा दादी थी, एक एक का जीवन इतना सुंदर, दिव्य गुणों से भरपूर, त्याग और तपस्या की मूर्तियां प्रैक्टिकल हम सब के सामने ऐसे मिसाल थीं और मिसाल हैं। साकार बाबा का अपना मिसाल, मातेश्वरी जी का अपना मिसाल, फिर उन्होंने जिनकी जिनको प्रेरणा दी, बीच की जो बहनें निकली पंजाब की तरफ, हमारी अचल दीदी, राज दीदी, उधर प्रेम दीदी, इधर हमारी सरला दीदी, भारती दीदी, सब एक एक का जब हम सोचते हैं, उधर नलनी दीदी, किस तरह से इतने ऊंचे संस्कार वाली हमारी बहनें भाई बाबा के बनते गए। इससे हम सभी का एक विचार चलना चाहिए कि अवश्य ही इन आत्माओं को कुछ ऐसी चीज मिली जो दुनिया में नहीं, सब कुछ है दुनिया के अंदर, धन दौलत है, शोहरत है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो आज मनुष्य जीवन में मिसिंग है, सच्ची मन की शांति, सच्चा आत्मिक प्यार, सच्ची पावन जीवन, ये सब मिसिंग है, नहीं है। और वास्तव में हम सब आत्माएं इस चीज को ही खोजती है। आप अपने जीवन से देख लें, बाबा के बनने से पहले सब कुछ होते हुए भी आप अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करते होंगे, और उस कमी को पूरा करने के लिए कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारे, कभी यात्रा, कभी कुंभ मेला, कुछ ना कुछ करते रहे। लेकिन जैसे ही परिचय मिलता है, बाबा का परिचय मिलता है, सामने हमारी दैवी बहनें नजर आती हैं, भाई नजर आते हैं, उनकी जीवन को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उनके नैनों को देखते हैं, तो जैसे ही उनकी जो दिव्य आकर्षण है वो महसूस कराती है कि वास्तव में ये कुछ दुनिया से न्यारी आत्माएं, और इनको जरूर कुछ ऐसी चीज मिली है जो संसार में जिसकी कमी है, और एक दिल होती है कि जानकारी ले। और उसके फलस्वरूप एक एक बाबा के आप सब गिने चुने रतन बाबा की माला के मन के बनते गए। तीन सौ अस्सी भाई बहनों से जो शुरुआत हुई आज कितने होंगे? किसी के पास वास्तविक गिनती नहीं है। सच्ची बात तो ये है, जब परिचय याद होता है तो 10 लाख कह देते हैं, 10 लाख परिवार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इससे कई गुना अधिक होंगे। और आज जो जिस तरह के माध्यम हैं, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, और भी कम्युनिकेशन के कई तरीके हैं, उसके द्वारा कई आत्माएं लाभ ले रही हैं। लेकिन उसमें मैं देखता हूं बाबा को पहचानने वाले और बाबा से सन्मुख मिलन मनाने वाले ऐसे महान भाग्यशाली आत्माएं, वो मधुबन पहुंचती हैं और आप वो महान भाग्यशाली। यहां आने के बाद मैं समझता हूं हरेक के दिल में एक ही लगन रहती है कि हमारा यहां आने के बाद हर सेकंड, हर संकल्प सफल हो, व्यर्थ ना जाए। इसलिए जब कोई अनजान व्यक्ति भी यहां आता है, यहां के माहौल को देखकर, यहां की शांति को देखकर, यहां के आपसी एक ईश्वरी परिवार के स्नेह को देखकर, बिना कुछ उनको समझाए वो रियलाइज करते हैं कि ये स्थान दुनिया से न्यारा है। और जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, बाबा की याद का अभ्यास करते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते हैं, तो इसका कुछ प्रकंपन बहुत शक्तिशाली बनता है। लाइट हाउस और माइट हाउस की बात मैंने बड़ा सहज रीति कह देती हैं, आज का ये विषय है। सवाल उठता है कि लाइट हाउस और माइट हाउस का भाव अर्थ क्या है, इससे क्या समझे हम? बाबा को लाइट हाउस माने, बाबा को माइट हाउस माने, और बाप समान बन जाए तो आप भी लाइट हाउस और माइट हाउस बन जाए। और जब ऐसा कोई लक्ष्य मिलता है तो उमंग भी आता है, कि हम ऐसे लाइट हाउस बन जाएं, ऐसे माइट हाउस बन जाएं। तो पहली बात है कि लाइट हाउस कार्य क्या करता है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते होंगे या कभी यात्रा की होगी, उन्होंने लाइट हाउस देखे होंगे। समुद्र के बीच में लाइट हाउस बनाते हैं, थोड़ा ऊंचा होता है, उसके अंदर जो लाइट होती है तो वो घूमती है, खास रात के टाइम, या तो दिन में भी अगर वहां बहुत फॉग होती है तो वो लाइट घूमती है। किसके लिए? समुद्र के अंदर जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, उनको देख करके उनसे अंदाजा लगाते हैं उनका रास्ता ठीक है, कहीं भटक तो नहीं गए हैं। तो लाइट हाउस दुनियावी तौर पर उन जहाजों को रास्ता दिखाने का काम करता है। एयरपोर्ट पर भी लाइट हाउस होता है। ईश्वरीय जीवन में हम सबकी जीवन लाइट हाउस कैसे है? तो पहले अपने आप को देखना पड़ता है कि मैं आत्मा स्वयं लाइट हाउस की तरह सदा जागृत रहता हूं, क्योंकि लाइट हाउस की लाइट कभी बंद नहीं होती है। तो क्या मेरी सदा जागृति स्थिति है? जब जागृत होंगे तो अपनी जीवन नैया कभी भटकेगी नहीं। और अगर कभी लाइट चली गई, हाँ, अज्ञानता का थोड़ा भी अंधकार आ गया तो क्या होगा? ठोकर खाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए लाइट हाउस बनना है तो ये एक पहले अपने आप को देखना है कि मैं सदा ज्ञानी तु आत्मा होकर के रहता हूं, सदा योगी तु आत्मा होकर के रहता हूं। अज्ञान की कोई बातें तो नहीं मन में आकर के तंग करती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लाइट हाउस की स्थिति सेवा के हिसाब से बहुत अच्छी है, बहुत ऊंची है और बहुत आवश्यक है। बाबा के बच्चे हैं ही, क्या स्लोगन है सभी का? सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। देखिए कितनी बड़ी बात है, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। वो प्रैक्टिकल देखते हैं। विश्व के कोने कोने से जब बाबा के बच्चे यहां आते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो पता चलता है सचमुच एक जगह ज्ञान लेने वाले वो कैसे दूसरी जगह जाकर के सेवा करते, और वहां से फिर जिनकी सेवा करते वो मधुबन तक आते हैं। जीवन में परिवर्तन हो जाता उनका, बाबा को पहचानने लगते हैं, बाबा से मिलने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात है ब्राह्मणों के जीवन की कि जैसे ही बाबा को पहचाना, स्वयं को पहचाना, श्रेष्ठ जीवन के महत्व को पहचाना, ब्राह्मण जीवन के महत्व को पहचाना, तो सबसे पहले तो स्वयं के जीवन का लाइट हाउस की लाइट ऑन हो गई, अपनी लाइट पहले ऑन हो जाती है और उसके बाद तो अंडरस्टूड है, कहीं भी जाएंगे, ब्राह्मणों का स्वभाव है, वैसे तो मानवता मानी ही ये जाती है कि अगर कोई अच्छी चीज आपको मिली है तो बांट करके खानी चाहिए। प्रसाद मंदिर में या गुरुद्वारे में लेते हैं तो एक भावना रहती है जाके परिवार वालों को बांट करके खाएंगे, अकेले नहीं खाएंगे। इसी तरह से ज्ञानी तो आत्माएं जो बाबा के बच्चे बने हैं उनकी जब ज्योति जगती है तो रहा नहीं जाता है, दूसरों को वो ज्ञान पहुंचाना चाहते हैं और इच्छा होती है कि अधिक से अधिक आत्माओं की सेवा हो। और अधिक से अधिक आत्माओं की सेवा का आधार है कि जितना लाइट हाउस और माइट हाउस आपकी स्थिति ऊंची बनती जाएगी उतना ही आपके द्वारा बाबा सेवा बहुत बहुत करवाएगा। अगर हम सेवा करते रहते हैं आप देखेंगे नाम दूसरों की सेवा का है, लेकिन उसमें सो सेवा समाई हुई है, अपनी स्थिति और ऊंची बनती जाती है, इशारा देते हैं दूसरे को, ध्यान अपना विशेष रहता है और इतने तक जब मुरली सुनते हैं। कुछ दिन पहले 1975 की अव्यक्त मुरली रिवाइज वो सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, बाबा ने 1975 में, अभी कई आप में से भाई बहने उस समय बाबा के बने भी नहीं थे, उस समय की मुरली आप देखिए क्या कहती, इतनी ऊंची बातें उस समय कही। संकल्प में भी कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए, वाणी में भी कोई बात ऐसी नहीं आनी चाहिए, कर्म में तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं है। वो कब होगी? जब आत्मा अंदर से इतनी शक्तिशाली होगी, इतनी विल पावर ज्यादा अच्छी होगी और लाइट हाउस होंगे तो आपको क्लैरिटी माइंड में आएगी, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। जब राइट और रॉन्ग को पहचानते हैं और अंदर में शक्ति होगी या माइट होगी, विल पावर ऐसी होगी, तो फिर आप कभी भी अनराइटियस बात करने के निमित्त नहीं बनेंगे। आपका एग्जाम्पल हमेशा राइटियस बात करने के लिए बहनें भी बताएंगी, भाई भी बताएंगे। लेकिन अगर अब यहां अगर की बात आ जाती, बाई चांस कहीं पुराना संस्कार कोई इमर्ज हो गया, छोटी मोटी कोई भूल हो गई, फिर क्या होता है? सबसे पहले तो पश्चाताप होता है, वो लाइट हाउस की स्थिति नहीं रहती है। लेकिन एक दीपक जो टिमटिमाता है उसके जैसी हो जाती है। तो ये प्रश्न उठता है कि ऐसी स्थिति बने कैसे, और उसका एक ही सहज तरीका जो मैंने अनुभव किया है, क्लास में हमेशा वही सुनाता, बाबा के महावाक्यों की कदर चाहिए, बाबा के प्यार की कदर चाहिए, बाबा के श्रीमत की कदर चाहिए। कहने में आता है धर्त पड़िए धर्म ना छोड़िए, हम अब ब्राह्मणों का जो स्वधर्म है वो सत धर्म है, उस धर्म पर कायम रहने वालों में विल पावर अपनी बहुत रहती है, उसमें ढीलापन नहीं चाहिए। जब ऐसी अपने अंदर दृढ़ता होगी तो दृढ़ता से माइट आएगी, दृढ़ता से आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और उसके साथ में एक बेहद की सेवा की भावना चाहिए कि मुझे बाबा ने तो कहा है आप सब बच्चे विश्व महाराजन बनो, विश्व महारानी बनो। हाँ, थोड़े दिन पहले मुरली में ये भी था, राज तो भले एक जगह करेंगे पर कहलाएंगे विश्व महाराजन। तो ऐसा एक लक्ष्य ऊंचा रखना उसका नशा बहुत। दूसरा, बाबा को क्या कहते हैं, दाता कहते हैं, देने वाला। तो दाता के बच्चे क्या होंगे सभी? हाँ, दाता के बच्चे भी मास्टर दाता होंगे, देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं। देखो, बाबा ने इतना सुंदर संकल्प दे दिया कि जब आप भगत थे तो मांगते थे, लेकिन जब से बाबा को पहचान लिया और बाबा के बच्चे बन गए तो अधिकारी बन गए। हर चीज अधिकार से मिलती है, मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। तो एक तो अधिकारीपन का नशा चाहिए और दूसरा बाबा को फॉलो करना कि दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं, हम देने वाले हैं। जितना ये एक संकल्प रहेगा तो आपका सिर सदा ऊंचा रहेगा, लाइट हाउस ऊंचा होता है। हाँ, यही फर्क है ज्ञानी तो आत्मा और भक्तों में। भक्त क्या करते हैं, झुकते ही रहते हैं, चरणों में पड़ते ही रहते हैं, नतमस्तक करते ही रहते हैं, और ज्ञानी तो आत्माएं क्या करेंगी, अपनी लाइट और माइट नैनों के द्वारा उसकी लेन देन करेंगे। सोचिए थोड़ा, जब से बाबा के बने, बाबा को पहचाना, तो मांगने की बात खत्म हो गई। अभी हैं मांगने वाले कोई बैठे हैं या सब अधिकारी बैठे हैं? जो अधिकारी बैठे हैं जरा हाथ उठाओ, सारे बाबा के बच्चे अधिकारी बैठे, ताली बजाओ अपने लिए। जितना अधिकारी अपने आप को फील करेंगे उतना ही सदा एनलाइटेंड रहेंगे, सदा लाइट हाउस अपना कार्य करता रहेगा, और उसके साथ साथ बाबा के साथ मन लगा रहेगा तो शक्ति भी मिलती रहेगी, तो माइट हाउस का भी काम साथ साथ होगा। جتنا لائٹ ہاؤس اور مائٹ ہاؤس کی فیلنگ میں رہیں گے اتنا اندر سے بہت بہت لائٹ رہیں گے. سر پہ کوئی بھاری پن نہیں ہوگا, پرانے وکرموں کا بوجھ ختم ہو جائے گا, آگے کی چنتا کا بوجھ آئے گا ہی نہیں. اور ورتمان میں تو کیا سوچ کے چلتے ہیں, پانا تھا سو پا لیا بس, اور کچھ باقی نہیں رہا. ارے جس کو خود بھگوان مل جائے, داتا مل جائے, اور جس سے سارے وشو کی بادشاہی مل جائے, اس کو اور کیا چاہیے. تو یہ گیت اپنے کو پکا کراتے رہیں گے جتنا کہ پانا تھا سو پا لیا بس, اتنا وہ نشچے, اور اس نشچے کے آدھار سے وہ نشہ رہے گا. لائٹ ہاؤس اور مائٹ ہاؤس کی استھتی بڑی سہج بن جائے گی. تو جتنا بابا کیا کہتا ہے, ساری مرلی کا سار کیا دیتا ہے, دو شبدوں میں سناؤ, دو شبدوں میں, باپ اور ورثہ. تو بابا کا ورتمان میں ورثہ ہے, سبھی گنوں کا ورثہ, سبھی شکتیوں کا ورثہ, سب باتوں, گیان کا اتنا بے حد. ابھی کل کی مرلی میں تھا, ساری پرتھوی کو کیا بنا دو, کاغذ بنا دو, سارے جنگل کو قلم بنا دو, سارے ساگر کو سیاہی بنا دو, تو بھی بابا کا جو گیان کا ورثہ ہے وہ پھر بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. آپ سوچئے 75 سال سے مرلی سن رہے ہیں, مرلی بابا سنا رہا ہے, مرلی میں کیا ہوتا ہے, لوکک باتیں نہیں ہوتی, گیان کی باتیں ہوتی ہیں, گیان کا بھنڈار ہوتا ہے, امولیہ گیان کے رتن ہوتے ہیں. جتنا اس کے وہ دھیان سے آپ پڑھیں گے, سنیں گے اور اس کے اوپر منن کریں گے تو ایک فیل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنے اپنے آپ کو ودوان, پنڈت, رشی, منی سب کہلوانے والے, ان کو یہ چیز پراپت نہیں ہوئی ہے جو بابا نے ہم بھولے بھالے بچوں کو دی. لیکن بھولے بھالوں کو کیوں دی ہے, کیونکہ بھولے بھالے بچوں نے بابا سے تیسرا نیتر پایا ہے, تیسرے نیتر سے بابا کو پہچانا ہے, گیان کے نیتر سے, اور پہچان کر کے بابا سے حق کے روپ میں ورثہ پراپت کیا ہے. اور ورثے میں آٹومیٹکلی سب گن شکتیاں سب آ جاتی ہیں, وردان آ جاتے ہیں. تو جتنا بابا کے ساتھ من لگا کے بیٹھے رہیں گے, چلتے رہیں گے, بلکہ سوتے بھی رہیں گے, تو باپ سمان استھتی کا انبھو کرتے رہیں گے. تو باپ سمان استھتی کیا ہے, بابا جس سمے ہم بچوں سے ملنے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آ کر کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, درشتی دیتے ہیں نا, ایک ایک کو درشتی دیتے ہیں. تو درشتی دینا مانا کیا, آتمک لائٹ دینا, آتمک مائٹ دینا. اس سمے اگر آپ تھوڑا اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کی اپنی استھتی کیا بن جاتی ہے, اتنا بڑا ہال بابا کے بچوں سے بھرا ہوتا ہے, دیش ودیش میں بابا کے بچے بیٹھے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے, سب کیا بدھی یوگ کہاں ہوتا ہے. एक बाबा के साथ लगता, सोचिए थोड़ा, तो उसके फलस्वरूप सारे विश्व में वो सारा वाइब्रेशन फैल रहा है। विश्व में शांति की बात चलती है तो जिस समय बाबा के साथ हम बैठे हैं या अभी भी बैठे हैं, मैं तो कहता हूं, ये वाइब्रेशन क्या कर रहा है? सारे विश्व के वातावरण को मदद कर रहा है कि विश्व में फिर से शांति का वातावरण बन जाए। और बाबा के बच्चे ही निमित्त बनते हैं सारे विश्व को फिर से स्वर्ग बनाने के लिए। स्वर्ग माने ही जहां शांति है, जहां सुख है, जहां धन धान्य संपन्न है। अभी मुरली में क्या, कल की मुरली में इतना सोना होगा, चांदी के भी वो सिक्के नहीं होंगे, सोने के होंगे। तो मुझे आया कि इतना बोझ कौन उठा के चलेगा, सोना तो बहुत भारी होता है। तो जरूरत ही नहीं होगी लेन देन की, आवश्यकता ही नहीं होगी, सभी सेल्फ सफिशिएंट होंगे, बहुत ही आनंद से रहेंगे। तो इसलिए अपने को अपनी मनपसंद राजधानी इस संसार में लाने के लिए अपने ज्ञान की लाइट और बाबा की याद की माइट, दोनों इनका प्रयोग करना है। और इस प्रयोग से जो बाबा बार बार कहता है, ज्वाला स्वरूप की अभ्यास करो, ऐसा अभ्यास करो जो जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरा हो जाए। उसका कारण क्या? कारण एक ही है, सृष्टि चक्र का समय पूरा हो रहा है। दुनिया वाले कहते रहते हैं, अभी सब इंतजार कर रहे हैं, कौन सी डेट का? 21 दिसंबर, इसी साल का 21 दिसंबर। पहले 12 12 12 पूरा हुआ, अभी 21 दिसंबर का कर रहे हैं। बल्कि एक न्यूज ही पढ़ी थी मैंने कि दुनिया में 7 में से एक व्यक्ति, माना 700 करोड़ में से या 600 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग इस परिवर्तन के नाम से इतने डर रहे हैं, अभी से लेकर के खाने पीने के सामान खरीद करके जमा कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बाद में भी कुछ टाइम, वो मतलब जिंदा रहना है, जिंदगी चलती रहे उसकी इच्छा बहुत है। लेकिन क्या हालत होगी, किस हालत में जिएंगे, वो नहीं। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतना सुंदर ज्ञान दे दिया कि बच्चे नहीं, ये तो पुरानी दुनिया जाएगी और आपका सत्युगी दैवी स्वराज कायम होगा, यहां पर स्थापित होगा, और आप बच्चे डबल ताजधारी बन करके राज करेंगे, इससे बढ़कर के और क्या चाहिए हमें। तो बाबा के बच्चों को वो नशा रहना चाहिए और उस नशे के साथ अपनी जिम्मेदारी का ताज सदा कायम रखना है कि हम निमित्त बच्चे हैं जो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हैं। हमारी लाइट और माइट इस विश्व को कलयुग से सत्युग में परिवर्तन करेगी इसके लिए हम सदा लाइट हाउस और माइट हाउस का पार्ट बजाते रहें। जितना वो पार्ट बजाएंगे तो बाबा क्या कहता है, उतना मेरे गले की माला के समीप मन के बन जाएंगे। तो आज का ये दिन शाम को क्या करेंगे, बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा से दृष्टि भी लेंगे और बाबा के वो प्यार के वाइब्रेशन और उसके साथ साथ बाबा से शक्ति अपने में भरेंगे ताकि हम क्या कहें, निरंतर लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर सेवा कर सकें। ओम शांति। अभी थोड़ा क्या करेंगे, जरा प्रैक्टिकल अभ्यास करें, सीधा बैठें। लाइट हाउस सीधा होता है ना, झुक के नहीं बैठता है, पीछे को सो नहीं जाता है, लेकिन सीधा। मैं भी आपके सामने सीधा होके बैठता हूं। और संकल्प के द्वारा, तीसरे नेत्र के द्वारा, दिव्य नेत्र के द्वारा हम आत्माएं स्वयं को अपने वास्तविक लाइट स्वरूप और लाइट की दुनिया में देखें। जरा बाबा कहता है, पहले आप सूक्ष्म वतन में मेरे पास आ जाओ और वहां से बाबा के साथ साथ फिर परम धाम में चलकर शिव बाबा के साथ समीप बैठकर शिव बाबा के संग के रंग में रंग जाए, उनका संग, रूहानी संग, और उनका रंग है दिव्यता। दिव्यता की लाइट से भरपूर हो जाएं और सारे विश्व को फिर वो दिव्य लाइट देने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस का काम करें। Thank you.
गले में हार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना भी प्यार से देखा हमने सामने उनको पाया, ऐसा पक्का साथी जिसने सदा ही साथ निभाया, मीठी वाणी में प्रभु दे दे, हरदम दीदार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बना, जब मीत बनाया खामा उसने हार, टूट कभी ना सकता है ये जन्म जन्म